ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8वां है और श्लोक संख्या भी कहा आसीत् यद् उदारात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावान् अयम् वै पुरुषः यत्ता अवयवैः पृथक् तावान् असौ इति प्रोक्तः संस्था अवयवान् इव आसीद् यदुदरात् पदम् लोकान् संस्थान लक्षणम् यावान् अवयम् वै पुरुष इयत्तावयव वै पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयनाविन संस्थान लक्षणम् यावानैवं वै पुरुषयत्ता वय वै पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थान वयवावनाविय यदुदरात् पदं पद्मं लोक संस्थान लक्षणम् यावान् वयं वै पुरुष यत्ता वय वैः पृथक् तावान् सविति प्रोक्त संस्था वयवनामैव
जिसके उदर से
पद्मम
कमल का फूल
लोक
संसार
संस्थान
स्थिति
लक्षणम
लक्षण
यावान
जैसा था
अयम
यह
वही
निश्चय पुरुष श्री भगवान यत्ता अनुमान अवयवैहि अवयवों से पृथक भिन्न तावान वैसा असौ वह इति प्रोक्तः ऐसा कहा जाता है। संस्था स्थिति अवयववान अवयव से युक्त इव सदृश अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यदि श्री भगवान जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकलता है अपनी इयत्ता से विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? यहाँ ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कारणोदक्षाय विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया, जिनके रोम कुपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भदक्षाय विष्णु के शरीर से निकलने कमल नाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता के अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती हैं। उदाहरणार्थ हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोकों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर तो केवल शरीर की इयत्ता के बल पर ही विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। ओम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वमदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकृतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 आसित यदुदरात पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावान अयम वै पुरुष इयत्ता अवयवैः पृथक् तावान साविति प्रोक्तः संस्था अवयवनाव। यदि श्री भगवान जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकलता है अपनी इयत्ता से विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? गर्भदक्षाय विष्णु को सारे जगत की आत्मा भी कहा है, यानी कि परमात्मा जो सब जगह विस्तीर्ण होंगे, हर एक कण कण में भी बसेंगे। हाँ, ये सिर्फ इनका विस्तार कहा। ब्रह्म संहिता में ये भी कहा है कि जब भगवान ने भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात किया तब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, प्रधान प्रकृति के रूप में वो निर्जीव पड़ी थी, यानी कि उसके अंदर जो जो तत्व प्रकट होंगे वो तत्व के मूल धातुएं होती हैं, मूल वो अव्यक्त रूप में बनी रही। जिस तरह सारे आकाश में एक छोटा सा कोने में एक बादल यदि कैसे खड़ा क्यों ना, बादल में भी कई कणे हैं, बादल घन तो नहीं है, घन जैसा दिखाई देता है लेकिन बादल के अंदर से आप पसार हो सकते हैं कि, लेकिन इनकी कण में जो परावर्तित शक्ति है यानी कि सूर्य का प्रकाश जब भी उस पर पड़ता है तो ये कण सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करती है, हमें सामने फेंकती है, इसलिए हम उसे देख पाते हैं। हाँ, ये सारा आकाश नीला छम है लेकिन एक कोने में ये बादल पड़ा है। तो उसी तरह आध्यात्मिक सृष्टि बहुत विशुद्ध होती है और एक भौतिक सृष्टि बादल की तरह बताई। तो जब भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का सृजन करने के लिए ये बादल जैसे प्रधान प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब उसमें संचार होने लगा और बहुत सारे ब्रह्मांड पैदा होने लगे सिर्फ दृष्टि से। जब दृष्टि पड़ी तो दृष्टि की किरणें भी विशीर्ण होती और एक एक किरण में एक एक कण परमात्मा के रूप में वो छा गई, ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया। अब सृष्टि का स्थूल स्वरूप व्यक्त हो रहा है। परीक्षित महाराज को यह प्रश्न हुआ कि भगवान का विराट रूप की जब बात आती है, ये विराट रूप सारे भौतिक तत्वों का समुचित संयोग से बड़ा विराट रूप बना और ये विराट रूप भी अपने पुरुषाकार जैसा जाता है। हाँ, हजारों मत्थे होंगे, हजारों हाथ होंगे, हजारे पांव होंगे, ना पांव तो दो ही होते लेकिन हजारे हाथ होते हैं, हजारे मत्थे होते हैं, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष आंखें भी सहस्त्र बताइए, सहस्त्र बाहु विश्वात्मा, ये विश्वात्मा यानी कि परमात्मा सारे विश्व की आत्मा। तो जब भगवान का स्थूल स्वरूप शरीर तो होता नहीं, भगवान का स्थूल शरीर तो होता नहीं, अध्यात्म का शरीर होता है, फिर भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सृष्टि में जो कार्य होंगे वो कार्य की विपूर्ति के लिए अपना शरीर मनुष्याकार जैसा या पुरुषाकार जैसा बनाते। तो पुरुषावतार में तीन पुरुष ऐसे बनते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीन पुरुषावतार कहलाते हैं। पुरुष बुद्धि, पुरुष शक्ति, पुरुष शब्द सिर्फ भगवान अकेले को लागू होता है क्योंकि इनकी सारी संपत्ति है, सारी सृष्टि है, इनके मालिक हैं, तो उनमें जो जो क्रियाएं हैं तो उनका भोक्ता वो होता है। लेकिन सब जीवों में जो ऐसी इच्छा हुई कि भगवान के विरुद्ध हम भी इनके गुणात्मक एकता वाले होने के कारण वो इच्छा स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं, भगवान की आवश्यकता नहीं, तब सृष्टि के ये भौतिक सृष्टि को संचारित करने के लिए भगवान ने दृष्टिपात करके सारे जीवों में अंदर स्थान दिया। अब जीवे भी प्रकृति के क्रम में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनको योग्य शरीर धारण करने की जिम्मेदारी विसर्ग में ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, ये प्रथम जीव को भी अपना पुरुषाकार मिला है, वो गुणों के अनुसार पुरुषाकार उनको मिला है, लेकिन जब उनकी स्वयं की शक्ति सृष्टि का सृजन करने में कुछ कामयाब नहीं होती, अरे स्वयं की जानकारी के लिए भी कामयाब नहीं होती, तब हाँ भगवान कृपा करके उसे तप तप शब्द बोलते हैं। वो आध्यात्मिक ध्वनि होने के कारण उसके हृदय में हाँ उसके अंतरात्मा में संचार हुआ। आध्यात्मिक ध्वनि तो कहीं भी असर कर सकती है, मृत शरीर को भी असर कर सकती है आध्यात्मिक ध्वनि। हाँ तो फिर जो बेभान अवस्था में पड़ा है तो उसको क्यों नहीं असर करेगी? जो मरण के समय नजदीक पहुंच गया है तो तुमको क्यों नहीं असर करेगी? आध्यात्मिक शक्ति का संचार भगवान जब करते हैं तो ब्रह्मा जी की अकल ठिकाने आती है। ओ मैंने पहले युग में इसी तरह तप द्वारा ही मैंने अपनी सारी जानकारी प्राप्त की थी कि अगले युग में मैंने जैसे सृष्टि का सृजन में विसर्ग करने के लिए मैंने जो योगदान दिया है अभी उसकी पुनः शुरुआत हो जाएगी। हाँ जैसे हम रात को जगते हैं, रात में निद्रा से बाद में सुबह उठती है तो जगते हैं तो हम पुनः एक ही चीज एक ही काम करने लग जाते, पहले उठो जाओ बाथरूम ब्रश साफ करो, हाँ दांत साफ करो, टॉयलेट जाओ नहा लो, बाद में सारी दैनिक क्रियाएं करते। तो उसी तरह ब्रह्मा जी को भी ये सृजन के पहले सूची पवित्रता लाने के लिए तप करने की आवश्यकता हुई जिससे द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान की अनुकंपा समझते। लेकिन वो सृष्टि की शुरुआत करने से पहले जब इनकी जानकारी हुई कि ये तप शब्द निकला है तो अवश्य कोई व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए। उनकी दृष्टि खुलती है, पवित्र होती है, तब कमल के नीचे नजर करते हैं तो ये विराट रूप दिखाई देता है। गर्भदक्षाए विष्णु जिनकी कमल नाभ से कमल की दंडी निकलती है, दंडी पर ब्रह्मा जी का जन्म है, तो वो नीचे नजर करते हैं तो सर्वप्रथम गर्भदक्षाए विष्णु नहीं दिखाई देते, विराट रूप दिखाई देता है। सारी सृष्टि में जो ये तत्व का सर्वप्रथम प्रकट होना होता है, 24 तत्व बताए गए हैं, 24 तत्वों में ये लोहा ऐसी नहीं, जहाँ साइंस में पढ़ते हैं ना 24 से अभी कितने तत्व है, 125 तत्व निकाले उन्होंने, कैल्शियम सोडियम इत्यादि सारे तत्व, ये तत्व की बात नहीं। 24 तत्व में 5 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद जो अंग इत्यादि की रचना, तो ये सारे 24 तत्वों में आते हैं। तो ये रूप दिखाई देता है ब्रह्मा जी को कि विराट रूप, विराट रूप की आंखें जब खुलती हैं तो सूर्य और चंद्र देवता जो अभी तक इनका स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है लेकिन वो जीव के रूप में अपनी सुषुप्त अवस्था में हैं, वो जगते हैं जीव के रूप में और आंखों में स्थान ले लेते हैं, आंखों का कर्तव्य करने के लिए स्थान ले लेते हैं। पहले कर्तव्य के लिए स्थान लेना पड़ता है देवता, उसी तरह जब मुख प्रकट होता है तो मुख में अग्नि का स्थान बताया है तो अग्नि अपना स्थान ले, नाकों के दो नासिकाओं में अश्विनी कुमारों का स्थान होता है। तो देवता अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं लेकिन अभी उपस्थित नहीं हुए, उनका प्रकटीकरण नहीं हुआ, वो तो ब्रह्मा के द्वारा होगा। तो रूप प्रकट होना की बात बताते हैं अब यहाँ भौतिक रूप जो विराट रूप कहलाता है कि सारे भौतिक तत्वों का एक साथ में समुच्चय संयोग होता है, तो वो संयोग में रूप जो निकलता है वो विराट रूप कहलाता है, वो काम चलाओ है। क्योंकि ब्रह्मा जी ये विराट रूप की प्रवृत्ति जानकर काफी अचंभे में पड़ जाते हैं और बाद में भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि ये तो मैं यज्ञ संपादित करके ये विराट रूप के अंगों को ही मैं अपना कर यज्ञ संपादित कर पाऊंगा, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं, यज्ञ की सामग्री के लिए चीज कहां से लाएंगे, तो भगवान के अंगों यानी विराट रूप के अंगों से प्राप्त करते हैं। तो ये विराट रूप सारे भौतिक तत्वों का समूचा रूप है, वो विराट पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। यूं देखे तो ये विराट रूप एक स्थल पर अर्जुन को भी भगवान ने प्रकट करके बताया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन की इच्छा हुई कि भगवान ने आपको आपकी ये सारी विभूतियां आपने दसवें अध्याय में मुझे बता दी, लेकिन एक साथ में सारी विभूतियां का दर्शन में एक स्थल पर कैसे कर सकता पूछा था, तो भगवान ने क्या कहा, अरे तेरा तेरी मांग तो अच्छी है लेकिन तेरी ये आंख काम में नहीं आएगी, उसके लिए भी मुझे तुझे दिव्य चक्षु देना पड़ेगा, तभी तू देख पाएगा, लेकिन जब तू मांग रहा है तो तुम्हें मुझे मंजूर है, चल देख। लेकिन वो विराट रूप काल रूप में आया है, उसकी प्रवृत्ति विराट रूप सृष्टि का सृजन करने की नहीं। यहां ब्रह्मा जी जो विराट रूप की दर्शन कर रहे हैं वो सृष्टि के सृजन के। वैसे ऐसा ही विराट रूप दुर्योधन को भी बताया था जब संधि का प्रस्ताव करने गए थे, तो दुर्योधन के पास पांच भाइयों के लिए पांच गांव की मांग की, दुर्योधन ने अलर्पण से क्या कहा था कि एक सोए की नोक बोकने की जगह भी नहीं दूंगा, सही ना। तब भगवान ने कहा पता है तेरा सर्वनाश हो जाएगा, करके भगवान ने विराट रूप बताया, तो दुर्योधन उसे और चढ़ बैठा, हाँ कृष्ण तू जादूगरी करता है, मुझे डराता है, ए सैनिक आओ उनको बंदी कर दो। भगवान कहे तू मुझे क्या बंदी करेगा, हाँ मैं अपने आप चलूंगा। तो दुर्योधन अचंभे में रह गया और भगवान चले गए, क्योंकि विनाशकाल विपरीत बुद्धि आ गई, सही ना। अभी तो ये विराट रूप भी अन्य अन्य ढंग से प्रकट होते हैं, ये तीसरा नंबर का विराट रूप की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन में इनका जो कर्तव्य सर्ग विसर्ग करना, सर्ग यानी सृजन हो गया है 24 तत्वों का, अब 24 तत्वों में मिश्रण करके हर एक जीवात्मा को उपयुक्त शरीर देने के लिए ब्रह्मा जी फॉर्मूला गढ़ते हैं। तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं जिसमें जो गुण प्रधान है वो गुण प्रधान होने के कारण उसका अनुरूप शरीर आपको मिलना चाहिए। जो इच्छा पानी में तैरने की इच्छा है, चलो मछली बन जाओ, मछली का रूप धारण करो, सही, वो भी भौतिक तीनों गुणों का सम्मिश्रण ही तो है, भौतिक शक्ति उसे बांधती है। तो इस तरह यहां ब्रह्मा जी जो दृष्टिपात कर रहे हैं वो विराट रूप का। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान आपका ये विराट रूप भी काम चलाओ है, लेकिन इससे मैं मुझे समझ आती है कि ये सारी सृष्टि में जो हेतु के लिए सृष्टि का सृजन हुआ है, तो ये सारी सृष्टि में आने वाले सभी जीवों आपकी तरफदारी वाले, कोई सेवा करे, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि अपने शरीर का योगदान दे दे तो उनकी बहुमुक्ति हो जाएगी। तो बेहतर है, मैं इतनी जानकारी से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपका काम जो है सारी सृष्टि में सभी जीवात्माओं को यथा योग्य शरीर देना है, तो वो जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूं ब्रह्मा जी के, मुझमें वो शक्ति प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान को ये मंजूर है, तो ये विराट रूप अदृश्य होकर गर्भदक्षायी विष्णु के रूप में सुंदर शरीर प्राप्त करने वाला है। और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को अपना दाहिना पांव ऊंचा करके कहा आशीर्वाद, यानी कि मेरी शरण ले रहा है तो ये पांव की शरण ले। और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, स्तुति के अंत में ब्रह्मा जी के साथ गर्भदक्षाय विष्णु ने शेखेंड किया, सही। ये गर्भदक्षाय विष्णु का जो रूप बताया है वो आध्यात्मिक रूप है, ये विराट रूप जैसा भौतिक रूप नहीं। तो अब परीक्षित महाराज का जो ये प्रश्न है कि भगवान के असली रूप और मनुष्य या अन्य जीवों का जो रूप आता है, या भगवान इन इन रूपों में अवतार धारण करते हैं, तो भगवान के रूप और मनुष्य हमारे जैसे के रूप में अंतर क्या है, अंतर क्या है, कौन सा अंतर होना चाहिए? गुण, गुण और दूसरा, हाँ लेकिन आध्यात्मिक शरीर कैसे बनता है? जब भौतिक शरीर बनता है तो आध्यात्मिक शरीर भी बनना होना चाहिए, लेकिन वो तीन आध्यात्मिक गुण है, लेकिन ये तो स्वरूप की बात कर रहे हैं। कहां कर्म पोषा, कर्म कहां है? आध्यात्मिक गुण और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मिश्रण स्वरूप में होता है। ये भौतिक शरीर जो है तो भौतिक शक्ति और भौतिक गुण सत्व रत्तमो गुण उसने बांधते हैं, तो गुण और शक्ति का सम्मिश्रण स्वरूप कहलाता है। इसकी पृच्छा ज्यादातर लोग जब आध्यात्मिक गुण की चर्चा नहीं करते या अपने स्वयं के ये तीन गुणों से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, तो उनको भगवान का शरीर भगवान का स्वरूप कैसा है उसकी तुलना कैसे कर सकते? अब जानती माम गूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वर। मूर्ख मनुष्य इसी तरह बेवकूफ के बेवकूफ रहते हैं, मूर्खों के सरदार अवजानंती करते हैं। जब भगवान कहते कि मैं मनुष्य जैसा शरीर में आता हूं, तब ये बारंबार गलती करते हैं, मुझे अपने में से एक मान लेते हैं, जबकि परम भावम अजानंत, परम भावम अजानंत। ये परम भाव क्या है? आध्यात्मिक भाव, परम यानी श्रेष्ठ, भौतिक त्रिगुणात्मक भाव की कोई बात नहीं। तो भगवान को क्या हमारे भौतिक भावों से प्राप्त किए जाएंगे? उनके साथ कोई व्यवहार हो पाएगा? वो क्या स्वीकारेंगे? इसलिए भक्ति हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे होती है। जब ब्रह्मा जी की अकल ठिकाने आ गई और उनकी जिम्मेदारी, तो उसी तरह हमें इनके समझाए अनुसार हमें भी स्वीकारना चाहिए। ये तो अपनी परंपरा की बात, अगुई बात है जो दूसरों में नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी ने जैसे स्वीकार किया वैसे स्वीकार करें। तो ये तुलनात्मक चर्चा
की आवश्यकता हमेशा बनी रहती, और परीक्षित महाराज का प्रश्न उत्तम बताया है। सारे प्रश्न की सराहना करेंगे, वरियानते प्रश्न, वरियान सर्वश्रेष्ठ, तेरे प्रश्न श्रेष्ठ, क्योंकि यही भवबंधन से मुक्ति कराए। और सुखदेव गोस्वामी स्पष्टता पूर्वक आध्यात्म के गुणों को ही प्रधान समझ करके उनका समाधान करें। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के स्वयं की ये पुष्टि है कि ये अमल पुराण है, इसमें सिर्फ आध्यात्मिक तत्वों को आगे के करके ही सारी सरीखाएं सारे प्रश्नों का समाधान किया गया। तो ये चर्चा में जो परीक्षित महाराज हम सबके हित के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं और हर एक प्रश्न उत्तम है। प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो तात्पर्य में, कि यहां यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न हो तो प्रश्न के पीछे आध्यात्मिक गुणों की चर्चा ही होनी चाहिए, उसके द्वारा ही हमारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है। कोई तर्क से नहीं कर सकता समाधान, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो भिन्ना। कोई कहते कि देखो ने विष्णु पुराण में तो ऐसी कथा आती है, यही कथा यदि भागवत में भी है तो वहां और इसमें कितना भेद है, बहुत भेद होगा, नहीं तो व्यासदेव मूर्ख थोड़े हैं कि दोबारा रिपीट करेंगे। कथा तो एक सरीख ही दिखाई देगी, पर लेकिन यहां क्या स्पष्टता है। श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई, जब यही कहानी पहले विष्णु पुराण में भी बताई जाती है, ये दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता क्या क्या, लेकिन रिपीट है, भेद होना ही चाहिए। प्रहलाद महाराज की बातें उसमें भी है और भागवत में भी, क्या फर्क। श्रीमद् भागवत को अमल पुराण क्यों कहा है, भौतिक तीनों गुणों का कोई प्राधान्य नहीं बताया। यहां त्रिगुणात्मक भाव से, यानी कि सत्व रज और तम के भाव से श्रीमद् भागवत में कोई स्पष्टता नहीं। सारा उल्लेख अध्यात्म यानी कि सत चित और आनंद, ये आत्मा के गुणों को अनुलक्ष में रखकर ही सारी चर्चा हुई है। ज्यादातर लोग ये चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कथाएं ऐसी करते रहते हैं कि जिसमें ये गुणों स्पष्टता से बाहर निकलते ही। उदात्त कर्मों के लिए रामचंद्र जी की बात प्रशस्ति करेंगे, लेकिन ये उदात्त कर्म और अपने कर्मों में क्या भेद है वो नहीं बताएंगे। भगवान के स्वरूप और अपने स्वरूप में क्या भेद है वो नहीं बताएंगे। वो सचमुच मान लेते हैं कि रामचंद्र जी ने मनुष्य जैसे ही शरीर धारण किया है, जबकि उसकी उत्पत्ति तो दिव्य बताई गई है। उत्पत्ति दिव्य बताई गई, तो दिव्यता के लक्षणों को चर्चा न करके सिर्फ ऐसे कर्म बहुत हमें आनंद देते हैं,
और उसको सुनना ही चाहिए, आप अवश्य सुनना है, लेकिन मनोरंजन के लिए सुनना चाहिए। एक प्रकार का मनोरंजन बन जाता है, गीत संगीत इत्यादि धार कर लोगों को मनोरंजन द्वारा ही एक हेतु सिद्ध करना चाहते, लेकिन ये अध्यात्म का हेतु नहीं सिद्ध हो सकता। इसलिए ऐसी कथाओं में हमें रुचि नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि राम जी का चरित्र आध्यात्मिक रीति से उद्दार सर्वश्रेष्ठ नहीं, लेकिन मनुष्य इनकी प्रतिकृति है तो उनको कम से कम वो स्वीकार करके उनके चरणों में चलना चाहिए, अनुगामी बनना चाहिए। वो सिखाते हैं जिसके द्वारा दिव्यता प्रकट हो सकती है। भगवान यदि इतना विराट स्वरूप धारण करते हैं कि ये भौतिक रूप है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि चलो हम भी उनकी फोटो खींच लें। एक खगोल शास्त्री होबल स्पेस का बड़ा टेलीस्कोप बनाया, उन्होंने अवकाश में तीर्थ रख दिया। थोड़ी मुश्किल ही आई क्योंकि चला ही नहीं, फिर से कुछ रिपेयर करना पड़ा और वो थोड़ा फोटोग्राफ देने लगा। कई फोटोग्राफ कई नक्षत्रों के, कई आकाशगंगा के निकले। वो लोग काफी आश्चर्य में पड़ गए। एक फोटोग्राफ में कई घोड़े का जैसा रूप दिखाई दिया, तो और आश्चर्य में पड़ गए कि सचमुच इतना बड़ा घोड़ा हो सकता है। इसी तरह जब ये विराट रूप की चर्चा होती है तो हम ये सोचते हैं कि देखो ना, वामन देव ने भी 3 कदमों में सारी सृष्टि नाप ली थी। पहले कदमों में सीधे पहुंच गए, पहला सारा जो ब्रह्मांड है जहां बलि महाराज थे उसको उन्होंने कवर कर लिया, दूसरे में सारे जगत को, यानी जिसमें बहुत सारे ब्रह्मांड है इनको ले लिया, और तीसरा पांव रखते उनको सोच में पड़ गया कि मैंने तो कोई जगह बाकी ही नहीं रखी, कहां रखू। तो जब हम ये दृश्य का हम अनुमान लगाते हैं, यहां ये शब्द आया अनुमान, ये अनुमान करना, हमारी भौतिक दृष्टि से हम अनुमान करने लगते हैं कि इतना बड़ा पांव हो तो कैसे इनकी फोटो खींची जाए। इतना विराट, लेकिन शास्त्र कहता कि हाँ रूप है भगवान का, लेकिन अपनी छोटी सी बुद्धि में दृष्टि का जो जो लेंस होता है कांच, वो इतना छोटा है तो इतना बड़ा कैसे नाप सके। तो तर्कों से नाप नहीं पाते। एक शास्त्र ये कहता है, दूसरा शास्त्र दूसरी बात करता है, तो दो शास्त्रों की मिलावट से भी नहीं नाप सकते। या कोई एक जानकार के पास जाओ तो उसकी बुद्धि भी इतनी सीमित होती है, तो दूसरे जानकार थोड़ा कुछ और कहेगा तो दोनों में विरोधाभास, यानी हम कंफ्यूज के कंफ्यूज रहेंगे, हमें परेशानी ही रहेगी कि समाधान नहीं कर पाएंगे। तो धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पन्था, निहितं गुहायां, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, ये आध्यात्मिक तत्व जो है वो धर्म से तत्व है, वो कहां छिपा है? जिन्होंने समझा है उनके चरणानुगामी हो तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। गुहा यानी कि हृदय बहुत अंतःस्थल कहलाता है, जो गुफा भी कह, गुहा यानी गुफा, हाँ, जिसमें बाहर से तो पता ही नहीं चलता कि ये कोई अंदर जगह है, हाँ। जब हृदय की बात करते हैं तो हृदय को तो देख पाते हैं, उसमें यदि हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो क्या मिलेगा? आत्मा परमात्मा नहीं, हाँ। तो ये गुहा या अंतस्थल इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। अणोरण्याम महतो महियान, हाँ, जंतु निहितम गुहायाम, हाँ, आत्मा परमात्मा की ये साइज की बात बताते हैं। अरे आत्मा के बीच अंदर भी परमात्मा रह सकते हैं, इतने छोटे भी बन सकते हैं और बड़े से बड़े भी बन सकते हैं, लेकिन गुहा यानी अंतस्थल जिसे हम हृदय कह सकते हैं, लेकिन ये दबकता हुआ मांस का लोचा नहीं, सबसे गहरी चिंतन की जो जगह है वो हृदय कहलाए, जहां आत्मा अपने सारी चीजों का अनुभव करता है कि अपनी आसपास क्या घूम रहा है। हम आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन चिंतन ही एक अंदर आंतरिक मनोमंथन की बात है, जिसमें बहुत गहराई से न बुद्धि न अहंकार न मन, हाँ, उसके भी और गहराई से यदि छूने की आवश्यकता होती है, ध्यान में चिंतन में वो गुहा तक पहुंचने की आवश्यकता है, हाँ। तो धीर गंभीर पुरुष जो होता है वो ऐसे चिंतन अपनाकर, हाँ, हर एक चीजों के पीछे क्या भावार्थ है, क्या इच्छा है भगवान की या गुरु की, क्या इच्छा है उसको जानकर, हाँ, वो, हाँ, बहुत, हाँ, समझदारी, हाँ, बनाता है, समझदारी से सारा काम कर लेता है, हाँ। तो धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, ये गुहा यानी कि अंतस्थ की बात कर रहे हैं। तो विराट रूप भगवान में मौजूद है, भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप में भी मौजूद है। कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो सारे अवतार में समाये होते हैं, भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं तो सारे अवतार इनमें समाये। अवतार लेने वाला तो भगवान है, इसलिए उनको अवतारी कहा जाता है। जब अवतारी अवतार के रूप में आते हैं तो क्या अन्य अवतार इनके साथ नहीं होंगे, इनमें समाये हैं। तो विशुद्ध भक्ति में हमेशा आध्यात्मिक गुणों पर जो आश्रित रहता है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजंतिम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो विशुद्ध भक्त है तो भगवान के ये विशुद्ध गुण आध्यात्मिक गुणों पर वो चिंतन करता है, उस पर आश्रित रहता है, भौतिक गुणों पर आश्रित नहीं, हाँ। हम तो भौतिक गुण आध्यात्मिक दोनों की खिचड़ी बना लेते हैं, हाँ। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिं आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मनस तभी ही प्राप्त होता है, अनन्य भक्ति, अनन्य मनस, अनन्य चिंतन सिर्फ एक पर यदि करना है तो वो आध्यात्मिक को ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भूतादि सारे जीवों का में मूल आदि हूं, मेरे से शुरुआत हुई और मैं हमेशा अव्यय रहता हूं, ये सारे जीवात्मा मेरे से अलग हुए हैं फिर भी मेरा क्षय नहीं हुआ। और जीवात्मा यदि शरीर धारण करते हैं तो क्या भगवान के लिए शरीर धारण करना क्या मुश्किल की बात है? लेकिन हमें समझने में मुश्किली पड़ती है, क्यों? मुश्किल खड़ी करना कौन है? तीन गुण, भौतिक गुण, सत्व रज और तम, हम उतना ही परिचय करते हैं, इसलिए तीन गुणों से ऊपर उठने की आवश्यकता बताई है। हमें क्यों तीन गुणों से ऊपर उठने की आवश्यकता है? क्योंकि आत्मा के भी तीन आध्यात्मिक गुण हैं, वो भौतिक गुणों से नहीं बना है। ये अपनी प्रपोजिशन, प्रस्ताव ये है कि हर एक जीव भगवान का अंश है, यानी कि भगवान के आध्यात्मिक गुण का उसका बंधारण है। अभी ये बंधारण वाला ये भौतिक गुणों के प्रभाव में आ जाता है तो क्या ये भौतिक बन जाता है? क्योंकि जागृति यदि जो बनी रहे तो अवश्य ये संभावना भी बनी रहती है कि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। उसकी पूर्ण जागृति के लिए क्या करना चाहिए, आध्यात्मिकता की जागृति के लिए क्या करना चाहिए?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस ढंग से हमें हमेशा ये याद रखना कि हाँ, भगवान के दिव्य स्वरूप की चर्चा के लिए हमें जो भेद सामने रखना है, यदि भेद नहीं रखेंगे अपने आप तब भगवान के श्री विग्रह के साथ हम यूं त्यूं चेष्टा करने लग जाएंगे अपने भौतिक गुणों के साथ। वो मना किया, मना करा है, इसलिए कितने निषिद्ध आचार का पालन करना होता है और कैसे विशुद्ध आचार अपनाना पड़ता है। जो लोग श्री विग्रह की सेवा करते हैं वो उनको काफी तकेदारी दी जाती है, पुजारी लोगों को खासकर। तो भगवान के विशुद्ध स्वरूप के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और ये विराट रूप क्या चीज है उसकी भी बातें कर। हम मनुष्य के शरीरों और भगवान के शरीर में क्या अंतर है उसकी स्पष्टता का ये प्रश्न। किसी को कोई प्रश्न है बोलिए। कल्प कल्प का यदि भेद हो तो गुणों का तो भेद तो बताया जाते हैं, हर एक कल्प में गुणों की तो असर होती है, भौतिक गुणों के अनुसार कल्प बदलता रहता है। सारी सृष्टि का संचालन तो तीन भौतिक गुणों से ही होता है। माया ही यस्य जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान सत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तुम्हां भजामि। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे कम से कम सत्व गुण के साथ मित्रता रखनी पड़ेगी, इसका ही आचरण करके मैं अध्यात्म के गुण पर चिंतन कर सकता हूँ। और ये चिंतन के अंत में जो विशुद्ध सत्व भगवान है उनको हम बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। कथा में धीरे धीरे विकास के लिए भेद बताया गया है। यदि ये सारे जो विकास के क्रम के अनुसार 17 पुराणों की रचना हुई, उसे पहले 108 उपनिषद भी हो गए, इतिहास महाभारत इत्यादि भी हो गए, उसके पहले 4 वेद भी बना दिए, ये सब करने के बावजूद भी उस व्यासदेव के हृदय में कुछ चुभता था, उसको संतोष नहीं, उसे चैन नहीं मिला। यही स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में तो आता है। तो गुरु की आवश्यकता वहां बनी रही, नारद मुनि आकर क्या उन्होंने डांट मारी है कि तूने ये सारा रचना करके सारे जीवों के भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तूने किया, इसमें फायदा क्या हुआ? उसके लिए कुछ नहीं किया जो अंतिम फायदा के लिए करना चाहिए, तो भगवान की शरणागति। तो ऐसा शास्त्र की रचना कर जिसमें भगवान के आध्यात्मिक गुणों की चर्चा के अलावा दूसरा कोई नहीं हो, और ऐसे विशुद्ध भक्तों के द्वारा ही तो सुना। तो 12 महाजन की कथा फिर से करी, लेकिन तत्व भेद रहा, आवश्यकता हो गई थी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम में आवश्यकता क्या थी, और ये कलयुग के मानवियों के लिए जो आवश्यकता के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की, वो आवश्यकता क्या कथाकार सामने रखते हैं, इनके लिए कथा करते हैं। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी को क्यों कहना पड़ा कि हम पेशेवर कथाकार नहीं बने। इनकी न तो कथा सुननी चाहिए न इनका अनुकरण करना चाहिए। तत्व भेद है। लोग अन्य पुराणों की क्यों चर्चा नहीं करते, कभी कभी शिव पुराण या इत्यादि ले लेते हैं, देवी भागवत करने लग जाते हैं। कोई विष्णु पुराण की सीरीज निकालता, पुराणों के 3 विभाग बनाए, सात्विक राजसिक और तामसिक, क्योंकि गुणों से संबंधित। विष्णु पुराण सात्विक होगा लेकिन आध्यात्मिकता कितनी खिचड़ी है। तो ये सारा निचोड़ हमें ये श्रीमद् भागवत में जब मिलता है तो उसकी महत्ता सर्वश्रेष्ठ बनी रहती है। वो हेतु के लिए ही तो भागवत अनित्यम भागवत सेवया करने को कहा है, सत्ता भागवत सेवया नहीं कहा। और कोई प्रश्न है? अवश्य, क्योंकि सारी भौतिक सृष्टि इनसे पैदा हुई है, इनका अंश है, इनकी शक्ति है, लेकिन इनकी पूजा कोई नहीं करता। देखें मंदिर विराट रूप के, प्रभुपाद मना करते हैं, विराट रूप की फोटो देखी होगी, अर्जुन नहीं पूजा करता, वो घबराता है और कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर हटाओ इनको, हमारा कोई तालमेल नहीं। हम समझ सकते हैं आपका ही है, लेकिन ये आप भी माया का पर्दा हटाओ। भगवान के प्रेम के आगे विराट रूप की कोई आवश्यकता नहीं, ये सारी भौतिक सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालय मशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता। ये दुःखालय अशाश्वतम् भौतिक विराट रूप तो है, हम देख नहीं पाते, लेकिन वहीं तो रह रहे हैं, वहीं तो सब सारा काम कर रहे हैं। विराट रूप में ही जमुना बह रही है, और विराट रूप में ये जमुना में भी हम अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं, हमारी सारी प्रवृत्ति उसमें, तो उनसे क्या हम प्रेम कर सकते हैं। हाँ, भगवान की सेवा और भगवान की सुखाकारी, भगवान की अनुकूलता वाली सारी सेवा भक्ति कहलाती है। हाँ, लेकिन विराट रूप के साथ हमारा ज्यादा कोई निस्बत नहीं है, वो तो भगवान की शक्ति है, भगवान की यही शक्ति द्वारा सृजन की साधन शक्ति बनाई गई, सृजन की साधन शक्ति। हाँ, और ये शक्ति का प्रकटीकरण है विराट पुरुष। क्या सारी सृष्टि अपने आप में संचालित है कि नहीं, स्वयं संचालित है कि नहीं सारी सृष्टि? भगवान ने जो जो बनाया है सारी सृष्टि में स्वयं संचालित है कि नहीं? इतनी बड़ी शक्ति भगवान में अंदर डाली है, क्योंकि भगवान स्वयं संचालित होते हैं, सही ना? लेकिन एक मनुष्य ही भगवान के विरोधी काम करने वाला है, जो पहले से विरोध करता आया हो और यहां भी विरोध करता है और प्रदूषण करने लगता है। हाँ, सब प्रकार का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण, कोई चीज ऐसी बाकी रखी है मनुष्य ने कि जो प्रदूषित नहीं की उसने? चेतना का भी प्रदूषण हो गया। तो भगवान का ये विराट रूप है, हाँ, उसको समझा सकते हैं, लेकिन ये स्वरूप के साथ मनुष्य आत्मा अपना स्वरूप का कोई निस्पत नहीं। भौतिक तत्वों से आत्मा बनी ही नहीं, अभिन्न है, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये दिया है, तो ये विराट रूप समझने की तो आवश्यकता होती है। विराट स्वरूप समझने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इनके साथ कोई निस्बत नहीं, क्या उनको प्रेम करोगे? वहां तो आपको देखना पड़ेगा कि भगवान का कौन सा मुख मुस्कुरा रहा है, कौन से मुख में अग्नि रही है, वहां मत जाना। वहां तो भीष्म पितामह इत्यादि द्रोणाचार्य सभी जानते हैं, जाना पड़ता है परवशता से। अर्जुन ने ये देखा विराट रूप तो भय से कंपित हो गया। जब भय पैदा करता है ये विराट रूप, तो प्रेम कैसे कर पाएगा? भगवान का ही तो स्वरूप है, लेकिन पृच्छा कर सकता है वो, हाँ, आप कौन हो, आपकी क्या प्रवृत्ति है? हाँ, मैं नहीं समझ सकता, इसलिए आप उसे समझाइए, आपका ही है, आप ही इस स्वरूप में है। तो तब भगवान ने कहा कालो अहम अस्मि कुलक्षय प्रवृद्धो, सारे कुल का नाश करने के लिए मैं यहाँ प्रवृत्त हूँ काल के रूप में आया। बोलो कौन काल के साथ प्रेम करेगा? है इसी तरह परीक्षित महाराज के प्रश्न में जो उत्तमता का जो लक्षण है वो अध्यात्म का है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसकी बहुत सराहना करते हैं।
जय
प्रभुपाद की।